करे हरी कीर्तन विदाना नृत्यारंभिल प्रभु जगतेर प्राणा। विदाना नृत्यारंभिल प्रभु जगतेर श्री हरि वास रे हरि कीर्तन विदाना नृत्यारंभिला प्रभु जगतेर प्राणा। हरि नृत्यारंभिला प्रभु जगतेर प्राण। भावा वेशे माला नाही रहे गलाया छिंडिया फोड़ो ए गिया भक्तेर गाया। रहे गलाया छिंडिया फोड़ो ए गिया भक्तेर गाया। श्री हरि वास रे कीर्तन विदाना नृत्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राणा। श्री हरि वास हरि कीर्तन विदाना नृत्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राणा। पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ कुटिला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। अंगने शुभारंभ कुटिला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। यारा नामानंदे शिव वसन न जाने यार रसे नाचे शिव से नाचे अपाने। यार नामे आजा मिला पाईला मोचना यार नामे श्रवणे संसार बंद घुछे। संसार बंद मृदंग मंदिर बाजे शंक करताला ब्रह्मांड बेदिला ध्वनि पूरी आकाश। चौदी केर अमंगल जाय सर्वनाश चतुर्द के श्री हरि मंगल संकीर्तना। हे न प्रभु अवतारी कलियुग नाचे यार नाम गाये शुक नारद बेडाया। मध्य नाचे जगन्नाथ मिश्र नंदन सबर अंगे ते शोभे श्री चंदन माला। सर्व महाप्रायश्चित हे प्रभुर नाम सहस्रवदन प्रभु यार गुण गाय। आनंदे गाये ना कृष्ण रस होई भोला, निजानंदे नाचे महा प्रभु विश्वंवर। ते प्रभु नाचाये, ते प्रभु नाचाये देखे यत भाग्यवान, श्री कृष्ण चैतन्य नित्य नंद चंद जान। निजानंदे नाचे महा प्रभु विश्वंबर, चरण ताल सुनि अति मनोहर। कृष्ण चैतन्य नित्य नंद चंद जान, वृंदावन दास प्रभु पद युगे गान। श्री हरि वासर हरि कीर्तन विदान, नृत्य आरंभिला प्रभु गान। आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण, श्री हरि वासर हरि कीर्तन विदान, नृत्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। कीर्तन विदान जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वन जा यमुना तीरा बन जारी, जयो राधा माधव कुंज विहारी,
दरवाजे के बीच में जब केवल ब्रह्मचारी हैं, जैसे जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे श्रीवास ठाकुर के घर में रात को, उस समय किसी को वहां अनुमति नहीं थी। और एक बार वहां पर एक ऐसे ब्रह्मचारी आए जो केवल दूध पीते थे, दूध के ऊपर उनका जीवन चलता था। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कीर्तन रोक दिया बीच में कि कुछ कीर्तन में मजा नहीं आ रहा है, क्या बात है, कुछ कोई है क्या और इधर, अनुमति के बिना कोई आए हैं क्या? फिर उस समूह को बताया कि हाँ, श्रीवास ठाकुर से पूछा तो श्रीवास ठाकुर ने कहा हाँ, एक ब्रह्मचारी है लेकिन बहुत तपस्वी है, केवल दूध पीता है। तो महाप्रभु ने जवाब दिया कि दूध पीकर हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते, इसके लिए कृष्ण भक्ति चाहिए। तो नहीं तो वो ब्रह्मचारी बाहर आके बड़े उसको बुरा लगा कि आके बहुत उसने क्षमा याचना की। उसके नम्र भाव को देखकर महाप्रभु प्रसन्न हुए, फिर उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। तो इसका मतलब है कि ठीक है, कीर्तन हम कर रहे हैं उत्साह से, अपने आपस में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाहर जो है हमारा व्यवहार बहुत ही सौम्य, बहुत ही नम्र, विनीत होना चाहिए। जब प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था कि आपके शिष्य, आप क्या चाहते हैं, आपके शिष्य कौन है, कैसे पहचाने जा सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे शिष्य वो हैं जो सज्जन है, जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब क्या है? आजकल जेंटलमैन मतलब लोग सोचते हैं कि जो पैंट बूट सूट बूट पहनता है ना, वो जेंटलमैन हो गया। जेंटलमैन मतलब जो मैन जेंटल है वो, है ना। जेंटल मतलब क्या है? सूक्ष्म है, मृदु है, कोमल है। अरे तुरे करने वाला वो जेंटलमैन कैसे हो सकता है? मतलब वो रफ एकदम नहीं होना है, मृदु होना है। ये स्वभाव ब्रह्मचारी का होना चाहिए, सुशील, मृदु, सौम्य। प्रभु रामचंद्र जी के गुण देखिए कैसे थे, मृदुभाषी, हमेशा मीठा बोलते थे, मधुरभाषी। मृदुभाषी मतलब हल्का बोलना, मधुरभाषी मतलब मीठा बोलना। मीठे तरह से बोलना चाहिए ब्रह्मचारी को हमेशा। और मृदुभाषी मतलब कि कोई अहंकार से उसको बोले भी, कोई उसको डांटे भी, कोई गुस्सा उसके ऊपर करे, लेकिन वो गुस्सा नहीं करे, वो फिर भी नम्रता से बात करेगा। ऐसा नहीं कि वो उसने मेरे पास ऐसे कि मैं भी ऐसे दो शेर आगे टक्कर लिए, ऐसा ब्रह्मचारी जीवन नहीं। ब्रह्मचारी अब जब सातवां स्कंद है ही, तो सातवां स्कंद में हमने नारद मुनि का उपदेश है ना, जब वो देखते हैं कि क्या क्या ब्रह्मचारी को कैसे होना चाहिए, नारद मुनि भी उपदेश देते हैं। मुनिचार्य आश्रमों का वर्णन करते हैं और ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में भी बताते हैं। 12वां अध्याय, कई ऐसे चीजें हैं, लेकिन सुशीलो मित भुक्दक्ष श्रद्ध धानो जितेन्द्रिय यावदर्थम व्यवहरेत स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च। सुशील, उसको सुशील होना चाहिए ब्रह्मचारी। सुशील मतलब क्या है? हमेशा दूसरों से मीठे ढंग से बात करना, अच्छे ढंग से बात करना, नम्र होना, मृदु होना, ये ब्रह्मचारी का व्यवहार होना चाहिए। उल्टा बात करना, उल्टा जवाब देना, कभी ब्रह्मचारी को ये शोभा नहीं देता है। ब्रह्मचारी मतलब हमेशा उसको मालूम, जेंटलमैन हमको याद रखना चाहिए। और खास करके जब हम ये गहरवे वस्त्र धारण करेंगे तो लोग समाज में देखेंगे हमारी ओर कि इसका व्यवहार कैसा होता है, इसका बोलचाल कैसे है। तो हमें भी मृदुभाषी, मधुरभाषी, सुशील हमारा व्यवहार होना चाहिए, सबके सामने ऐसे पेश आना चाहिए। आजकल कलयुग के दोष, तमोगुण रजोगुण के दोष इतने हैं, सब जगह फैले हुए वातावरण में छा गए हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम के भीतर भी आ जाते हैं। फिर ब्रह्मचारी आश्रम में सुशील होने के बजाय भी फिर सब शेर बन जाते हैं, शेर वृत्ति आ जाती है, सुशील वृत्ति नहीं। शेर वृत्ति मतलब रजोगुण की वृत्ति, लेकिन हमें चाहिए नम्रता, सुशील। लेकिन जब जरूरत पड़े शेर की तरह हम कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी हमारे लिए एक प्रेरणा है ना, अखंड ब्रह्मचारी, सच्चे ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं। जब वो भगवान के लिए कुछ उनको होना पड़ता था तो बड़े एकदम कठोर हुआ करते थे, जैसे वज्रादपि कठोरानि कुसुमादपि कोमलम, है ना, वज्र से भी ज्यादा कठोर जब जरूरत पड़े, लेकिन कुसुम या एक पुष्प से भी ज्यादा कोमल। तो हनुमान जी जब भगवान रामचंद्र के सामने होते थे, कितने सुशील, अन्य भक्तों के साथ भी कितने सुशील। लंका के साथ रावण के सामने गए तो फिर एकदम कड़क हो गए। तो उसी प्रकार से ब्रह्मचारी को रहना है, जब जरूरत पड़े, अगर आवश्यकता पड़े, लेकिन रोज हमारे जीवन में ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साधारणतः हमें ऐसे ही रहना है, सुशील, मित भुक, जितना चाहिए उतना ही खाना, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। दक्ष मतलब जो हर कार्य में जो भी हम करते हैं उसमें अपने को दक्ष होने के लिए कोशिश करना। इसका मतलब है कि आलसी कभी नहीं होना, पूरा प्रयास करना। अगर हमको सेवा दी गई है कि हमें शौचालय को रोज साफ करना है, तो हमको इतनी अच्छी तरह से शौचालय साफ करने की कला सीखनी चाहिए कि बस ये हमारा सबसे जीवन का महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। उस समय के लिए हमको समझना चाहिए कि शौचालय को साफ करना कैसा है, क्या क्या करना चाहिए शौचालय को साफ करने के लिए। हमको दूसरों से पूछ लेना चाहिए जिनको अनुभव है, दूसरों से सीख लेना चाहिए कि शौचालय अच्छी तरह से साफ करने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, क्या कैसे अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है, क्या लगाने से अच्छी तरह से साफ होगा, क्या नहीं करने से अच्छा नहीं होगा, और क्या क्या नियमों के पालन करने पड़ेंगे ताकि ये और अच्छी तरह से साफ हो जाए। फिर हर एक सेवा के लिए, चाहे वो सब्जी काट रहे हो, हम रसोई कर रहे हो, हम आरती कर रहे हो, हम कीर्तन कर रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, ब्रह्मचारी को चाहिए कि जो भी सेवा उसको दी जाती है वो उसकी में दक्षता प्राप्त करे, उसमें बिल्कुल निपुणता प्राप्त करे। और निपुणता तब तक नहीं प्राप्त कर सकता व्यक्ति जब तक उसका वो हृदय उसमें नहीं डालेगा। अगर ब्रह्मचारी सोचेगा कि बस करने के लिए कर रहा है, करना है नाम के वास्ते, तो वो नहीं होगा। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें पूरा हृदय लगाकर हमको करना है, और हृदय लगा के करेंगे आलसी कभी नहीं होंगे। आलस और ब्रह्मचारी जीवन कभी भी साथ में नहीं जा सकते, दुश्मन है आपस के ये दोनों, आलस और ब्रह्मचार्य, एक ही व्यक्ति में रह नहीं सकते ये दोनों। आलस मतलब तमगुणी वृत्ति है और ब्रह्मचर्य सतगुणी वृत्ति है, तो इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मचारी आश्रम में हमेशा सतर्क रहना है हर एक भक्त को, जैसे फौज में होता है, जब बोला उठो चलो आओ, कभी भी किसी भी काम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, एवर रेडी। ये है ब्रह्मचारी जीवन। ब्रह्मचारी जीवन शिकायत का जीवन नहीं है, हमेशा शिकायत करते रहना, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ब्रह्मचारी जीवन मतलब तपस्या का जीवन, यज्ञ दान तप, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये तीन चीजें सारे चारों आश्रमों में करना है। तो ब्रह्मचारी जीवन विशेष करके सेवा के लिए, तपस्या के लिए है, कठिनाई के लिए है। तो कठिनाई तो होने ही वाली है, तो अगर हमने कष्ट सहन नहीं किया तो फिर हमारा ब्रह्मचारी जीवन आगे अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाएगा। श्रद्धानो जितेंद्रिय, तो श्रद्धानो मतलब उसको शास्त्रों में, गुरु के आदेशों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धावान। और साथ साथ जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए। यावत अर्थम व्यवहरेत स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च, और केवल स्त्रियों के साथ, ये ऐसे लोग जो स्त्रियों का संग करते हैं उनसे उतनी ही मात्रा में संग करना चाहिए जितना बिल्कुल आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मचारियों को चाहिए कि माताजियों के साथ बिल्कुल अपना जो बातचीत करने का ढंग है ये सब बिल्कुल नियंत्रित रखें। जैसे जैसे कोई सेवा है तो प्रतिष्ठा आने लगती है, अरे ये भक्त तो बहुत अच्छा पुस्तक वितरण करता है, उसका नाम बढ़ जाता है, उसका नाम अनाउंस हो जाएगा, और बहुत अच्छा कीर्तन करता है, बहुत अच्छा प्रवचन देता है, बहुत अच्छा रसोई करता है, बहुत कुछ भी हो, फिर उसमें प्रतिष्ठा मिल जाती है। तो इस प्रकार से जब हम कीर्तन भी करते हैं, यहाँ की ये ठीक है, लेकिन जब कीर्तन करते हैं तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो ऐसे कीर्तन करे कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि हम कितना अच्छा नृत्य करते हैं। हृदयनंद महाराज एक बार वो बोल रहे थे कि ब्रह्मचारियों का साधारण थे कीर्तन करने का उद्देश्य है कि क्या है, माताजियों को आकर्षित करने को हम कितना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, कितना नृत्य कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि ऐसे अलग होके कभी कीर्तन नृत्य नहीं करें, बीच में ग्रुप में करें। अलग हो जाएंगे तो हम अपनी ओर ध्यान आकर्षित करें, और खास करके जब हम शहरों में रहते हैं, मंदिरों में जहाँ पे बहुत माताजी लोग आते हैं, तो ये आकर्षण तो होता ही है। एक भी माताजी कमरे में आ जाती है तो उसका परिवर्तन हो जाता है। एक बार एक सन्यासी कह रहे थे कि अगर परमहंस भी हैं भरे हुए कमरे में और एक माताजी अंदर आ जाती, फिर से एक सूक्ष्म विकार आ जाता है मन में, थोड़ा कुछ बदल हो जाता है वातावरण में, कहीं कुछ एक कुछ तो कुछ बदल जाता है। और यहां तो कितने 200-300 माताजी एक साथ है ना, तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए ब्रह्मचारी को कि माताजी हमको देख रही हैं, हम माताजी के सामने कुछ करेंगे। ये अंदर से सूक्ष्म भावनाएं जब हम पहचान लेते हैं तुरंत उसको काट देना चाहिए, उसको पहचान, ईमानदार होना है अपने को, अपने हृदय में, क्योंकि ये बीज है, ये बीज बढ़ेगा तो उसको बाद में काटना वृक्ष हो जाएगा, उसको काटना मुश्किल हो जाएगा। वृक्ष होने के पहले बीज रूप में ही उसको वहीं पर उसको काट देना है, उसको जला देना है, और फिर प्रतिष्ठा की जब इच्छा और जागृत आ जाती, जागृत हो जाती है, तो फिर कठिनाई हो जाती है। भगवान किसी को कोई कला देते हैं, कोई विशेष योग्यता देते हैं, तो एक दृष्टि से वो खतरा भी है। किसी के पास कोई भी अच्छा गुण नहीं है, मतलब भौतिक दृष्टि से, वो अच्छा गा नहीं सकता, बेसुरा गाता है, वो प्रवचन अच्छा नहीं दे सकता है, दिखने में अच्छा नहीं है, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन सिंसियर भक्त है, सबसे सुरक्षित स्थान है ना, आसानी से जा सकता है। लेकिन जो अच्छा कीर्तन करता है, अच्छा नृत्य करता है, अच्छा प्रवचन देता है, अच्छा ये करता है, दिखने में भी अच्छा है, ये वो बहुत अच्छा कुछ उसका गुण है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर वन है ना, एकदम सब कुछ करने में आगे है, तो लोग आकर्षित हो जाते हैं उसके प्रति, वो खतरा है उसके लिए, है ना। गोविंद प्रभु बता रहे थे ना वासुदेव के बारे में, कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा कि चैतन्य महाप्रभु ने मेरे साथ ऐसे चमत्कार किया कि मेरा कुष्ठ रोग निकाल दिया, मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्रतिष्ठा। लेकिन अगर भगवान ने हमको वो दिया है वो कला, तो फिर उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए। और इसलिए हमें जानना चाहिए कि कला का उपयोग जब होता है कृष्ण की सेवा के लिए, तो उससे हमारा अहंकार न बढ़े, उससे उसके प्रति हमारी आसक्ति न हो, इससे हमें बहुत सावधान रखना चाहिए, रहना चाहिए। इसलिए चाहे वो प्रवचन हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो आरती हो, कुछ भी हो, वो हमेशा घूमते रहना चाहिए, सेवा रोटेशन में होना चाहिए, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि हम, ये मेरा अधिकार है, ये मैं ही करूँगा, जब ये होगा, ये उत्सव होगा, तो मेरा ही अधिकार ये करना, कि मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता है, ये आसक्ति नहीं। ब्रह्मचारी को किसी भी सेवा के प्रति भी आसक्त नहीं होना है, क्योंकि सेवा की आसक्ति के पीछे कई सूक्ष्म चीजें भी हो सकती हैं, शायद हम उनको पहचान भी नहीं सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी को बहुत ईमानदार रहना चाहिए, अपने हृदय में परीक्षा हमेशा करना चाहिए कि कहाँ ये अनर्थ है जो ऊपर आते जाएंगे। तो अगर हमको बोला जाए कि आज आप प्रवचन दो, तैयार, अभी एक हफ्ता प्रवचन नहीं, तैयार, एक हफ्ता लगातार कीर्तन करो, तैयार, अब से एक महीना बिल्कुल कीर्तन नहीं, तैयार, उस समय ये नहीं, अरे ये उत्सव आ रहा है, हम क्यों नहीं ड्रेसिंग करेंगे, हम क्यों नहीं आरती करेंगे, हम क्यों नहीं प्रवचन देंगे, क्यों नहीं कीर्तन करेंगे, हम क्यों नहीं सामने ये करेंगे, नहीं। ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को हमें ध्यान से रखना चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें हमारे ब्रह्मचर्य के पालन में बहुत हमको लाभदायक होंगी। अभी से अगर इनका अनुशीलन हमने किया, इसका अभ्यास हमने किया, तो आगे चल के हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा इससे। स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च, तो दोनों से, स्त्री से भी और जो स्त्री संगी हैं, जितना आवश्यक है उतना ही। कारण निकाल के माताजी से जाके बात नहीं करना। माताजी समझ लीजिए आप, उनको एक विशेष शक्ति भगवान ने प्रदान की होती है जो पुरुष में नहीं है। माताजी तुरंत जान सकते हैं कि एक पुरुष के मन में क्या चल रहा है। अगर पुरुष के मन में कोई ऐसी इच्छा है तो माताजी लोग पुरुष के पहले माताजी लोग पहचान लेती हैं। कई बार हमारे पास माताजी लोग आते हैं, ये इसका नजर अच्छा नहीं है। उनको कैसा पता, हमको पता नहीं चलता, उनको कैसे पता चलता। ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कभी कभी हमारे पास, क्योंकि माता जी लोगों को ये भगवान ने वो दृष्टि दी होती है, उनको पता चलता है कि किसकी नजर कैसी है। तो माता जी को पता चलता है, इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। साथ साथ में अगर माता जी लोग हमसे बात करने आए हैं तो हमें नहीं बात करना चाहिए। अगर कोई वरिष्ठ माता जी है तो नम्रता से उनसे बात करेंगे। कोई तरुण माता जी तरुणी है जो हमारे पास आती हैं कोई ना कोई कारण से, प्रभु जी हमको ये जरा बताइए ना, ये कार्यक्रम कभी है, ये कब है, क्या है, ये आपने प्रवचन में ऐसे ऐसे कहा तो इसका मतलब क्या है, तो हमको ऐसे तरुण माता जियों को बोलना चाहिए कि आप तो वो वरिष्ठ माता जियों से आप कृपया बात कीजिएगा। नम्रता से, प्रेम से, उन मतलब उनको सम्मान से बोलना चाहिए, माता जी ऐसे आप उनसे बात कीजिए। ज्यादा देर उनके साथ हम बातचीत करते रहेंगे, वैसे तीन गुण ऐसे हैं कि ये सत्वगुण का लक्षण ऐसे होता है, वो हम उनको बोलते जाएंगे फिर वो और कहीं चले जाएगा। कोई विस्तार में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जहां माता जी लोग बैठे होते हैं सेवा करने के लिए, फिर हम भी रहते हैं वहां, ब्रह्मचारी भी रहेंगे, तो कोई सेवा इधर उधर उधर, उस समय भी हमें सावधान होना चाहिए। जहां माता जी लोग बैठे होते हैं, जहां वो हमको देख सकते हैं, जहां तक हो सके उस जगह से हमको दूर रहना चाहिए। हाँ, कभी कभी संभव नहीं होता, जैसे उत्सव के समय माता जी लोग बैठ के हार बना रहे हैं सब, और फिर सारे ब्रह्मचारी डेकोरेशन कर रहे हैं मंदिर का, फिर भी हमको सावधान रहना है। हर अवस्था में हमको देखना चाहिए, जहां पर माता जी लोग हैं ज्यादा उनके सामने जाना, फिर वो वृत्ति आ जाती है मन में, कहां कितना भी बंद करें कि माता जी लोग हमको देखें कि हम कैसे अच्छी तरह से कर रहे हैं, सेवा कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, इसलिए ब्रह्मचारी को, जो बुद्धिमान ब्रह्मचारी होता है, ऐसी चीजों को, अपने हृदय की चीजों को, खतरे को संभाल लेता है, समझ जाता है। वो ऐसे कभी नहीं बोलते मेरा मेरे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो हमेशा याद रखता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो माताजियों के साथ में जो ऐसा व्यवहार होना चाहिए, तरुण भी क्यों ना हो। एक ब्रह्मचारी हमको बोल रहे थे, एक उनके बारे में कंप्लेंट आया था कि ये ब्रह्मचारी एक वो छोटी सी बच्ची को प्रसाद, लड़की को प्रसाद दे रहे थे, वो उसको एक जगह लेके गए प्रसाद देने के लिए। जब उस व्यक्ति से हमने पूछा तो बोले क्या है, वो छोटी है, ब्रह्मचारी को छोटी हो या बड़ी हो क्या काम है, कोई काम नहीं ब्रह्मचारी को ये सब करने के लिए। माता जी को जाके जा बार प्रसाद देना है करना, कोई जरूरत, कोई काम नहीं अपने को। अपना जीवन हम अगर शुद्ध रखेंगे तो बाकी हम 10 गुना ज्यादा सेवा कर पाएंगे। सिर्फ ब्रह्मचारी को अपने व्यवहार में सब शुद्ध रहना चाहिए, और ये भी जानना चाहिए कि लोग देखते हैं ये लोग ब्रह्मचारी लोग कैसे आचरण करते हैं, ब्रह्म आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म आचरण, ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, आध्यात्मिक स्तर का। तो पूरी तरह से सेवा में अगर हम संलग्न हो जाएंगे, स्वतंत्रता को त्यागेंगे, सुशील मृदु सौम्य हमारा व्यवहार हो जाएगा, जेंटलमैन, तो फिर हमारा ब्रह्मचारी जीवन जो है वो अच्छा चल सकता है। ये सब है, ये 11वें वस्त्र का महात्म्य, इसका सिग्निफिकेंस, इसकी इसकी इसका मतलब महत्व। तो जब हम ये धारण करते हैं इसको सस्ता नहीं लेना है। और हाँ, जब अपने अपने वस्त्र लेंगे तो उसमें अपने अपने आप नाम इनिशियल लिख दीजिए नीचे। हाँ, फिर वो रामानुजाचार्य के शिष्यों के साथ जैसे हुआ था, कॉपे ने एक दूसरे के कर दिए सब, हाँ झगड़े हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने अपने एक दूसरे के कपड़े पहनिए मत, एक दूसरे के चप्पल पहनिए मत, एक दूसरे के कर्मों को, आपके अपना कर्म बहुत है अपने लिए, है ना, अपने खुद के कर्म का बोझा बहुत है, भारी है, दूसरों के चप्पल, दूसरों के वस्त्र इत्यादि पहन को उनका भी कर्म हमारे ऊपर हम ले लेंगे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हमेशा जो साफ सफाई है बहुत अच्छा होना चाहिए, सब कुछ ठीक ठीक अपने जगह में होना चाहिए। अगर आश्रम में प्रसाद खाते हैं तो हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, प्रसाद लेने के बाद साफ करना चाहिए, वो अशुद्ध माना जाता है जगह, अगर वहाँ साफ नहीं होता तो फिर वो अशुद्ध माना जाता है। और प्रसाद हमेशा बंद होके रहना चाहिए आश्रम में। सब स्वच्छता मतलब सत्वगुण, जहां वातावरण में सत्वगुण नहीं है वहां ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन हो जाता है। इसलिए सारी चीजों को अपने को याद में रखना, वातावरण सब जगह रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सत्वगुण। इसलिए ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं खाना है। मितभुख मतलब न केवल इतना कि कितना खाना है, मात्रा की बात नहीं है, लेकिन किस तरह का भोजन हम खा रहे हैं। ज्यादा मसालेदार अचार ये वो खाना, वो भी अच्छा नहीं। जितना हमारे जिह्वा को हम वश में करेंगे उतना जनेन्द्रिया वश में आ जाएंगे। तो अभी हम गोविंद प्रभु से निवेदन करेंगे कि जिनको अभी गहरे वस्त्र मिलने वाले हैं, गोविंद प्रभु के हाथ से उनको गहरे वस्त्र देंगे। नहीं देंगे
आप?
ठीक है ना। तो आप याद रखिए, ये गहरे वस्त्र आप एक बहुत महत्वपूर्ण पथ में चले हैं, ठीक है ना। जब तक वस्त्र आएंगे तो आपके कोई और प्रश्न है, क्योंकि हम हमारे पिछले जीवन से जो डोरा है वो काट नहीं रहे हैं, वो पिछली वृत्ति, हम पिछले दिनों कैसे व्यवहार करते थे, कैसे बोलते थे, वही चीजों को हम उसी तरह से बोलते रहे हैं, और हम सतर्क नहीं रहे हैं कि अरे ये तो मैं पहले भक्त होने के पहले, ब्रह्मचारी होने के पहले ऐसे बात करता था, मेरे मित्रों के साथ ऐसे मैं बात करता था, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं भी ब्रह्मचारी हो गया हूँ, ये हरे तूरे करके बातचीत, ये जो हल्का लूज लैंग्वेज है, ये स्लैंग लैंग्वेज या ऐसे कोई भाषा जो रास्ते में लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अरे तूरे करके बात करना ये ठीक नहीं है, मैं पहले करता था लेकिन अब मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं भक्त हूँ, ये मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसे ब्रह्मचारी को याद करना चाहिए कि जब वो देखेगा कि मैं किस तरह की भाषा बोल रहा हूँ, किस तरह से बोल रहा हूँ, तो भक्त को सोचना चाहिए कि ऐसे उचित नहीं है। उसी प्रकार से हर कार्य को, हर कार्य के बारे में अपने को ऐसे ही सतर्क रहना है। सब एक ही रंग है ना, कि सब अलग अलग रंग है, एक ही का एक कुछ एक थोड़ा सा सूक्ष्म विकार आ जाता है। सब बैठिएगा है कि कभी कभी मंदिर में सेवा करते समय माताजी लोग आती हैं, वो बातचीत करना ही पड़ता है। परिस्थिति के ऊपर अपने को देखना चाहिए। जैसे यहाँ प्रभुपाद नारद मुनि कहते हैं, जितना जरूरी है केवल उतना ही हमको बात करना है, उतना ही बस, जरूरत से ज्यादा नहीं। कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं कि ऑल्टर में, डीटी रूम में, पुजारी रूम में पीछे एक साथ प्रभु जी माता जी कभी नहीं होने, ब्रह्मचारी और माता जी लोग नहीं होने चाहिए। ये माता जी लोग खास करके फेस्टिवल के समय ब्रह्मचारियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, किचन में नीचे या ऊपर पुजारी रूम में या कहीं भी, ब्रह्मचारियों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। जहां माता जी लोग आपस में सेवा करके बातचीत कर रही हैं, माता जी लोगों का बातचीत सुनना भी ठीक नहीं है। वो आपस में बात कर रही है, हम हैं दूर, लेकिन उनका बातचीत सुनते सुनते हमारे कान में उसका सूक्ष्म परिवर्तन, वो हृदय में परिवर्तन हो जाता है। तो जब आवश्यक नहीं है कम से कम तभी तो हमको नहीं करना है। और अगर सेवा के लिए बात करना भी पड़े तो कोई वृद्ध माताजियों से, वरिष्ठ माताजियों से ही संपर्क करके बोलना चाहिए। तरुणी माताजी से कभी नहीं बात करके ऐसे बोलना। तो इन सब खास करके थोड़ी ऐसी सेवाएं हैं, किचन सेवा, ऑल्टर सेवा, फूल मालाओं की सेवा, ऐसी कोई सेवाएं हैं जिसमें हमको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और विशेष करके ऑल्टर में पीछे, ये जब से आश्रम की शुरुआत हुई है तब से ये एक समस्या रही है। इसके बारे में सब ब्रह्मचारियों को सावधान होना है। और कोई एक ब्रह्मचारी ऐसे कर भी रहा है तो अन्य ब्रह्मचारियों को बड़े प्रेम से उसको बोलना चाहिए, प्रभु जी जरा देखो, जरा इधर माता जी ज्यादा हैं, आप अंदर अभी नहीं जाना हो। तो ऐसे माता जियों को देख देख के, उनके साथ साथ में रह के हमारे हृदय के ऊपर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी हो सकता है जरूर, लेकिन ज्यादा नहीं। और जो गृहस्थ भक्त हैं उनके साथ भी हम अच्छी तरह से दोस्ती रख सकते हैं, अच्छी तरह से उनको साथ प्रेम से व्यवहार कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन ज्यादा समय ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारियों के साथ ही होना चाहिए। अगर ब्रह्मचारी केवल गृहस्थ पुरुषों के साथ भी हमेशा ज्यादा समय बिताए वो भी उतना ठीक, हालांकि वो अच्छे भक्त होंगे, सिंसियर भक्त होंगे, उनमें कोई दोष नहीं। लेकिन ज्यादा समय बिताने से आपस में सूक्ष्म एक परिवर्तन हो सकता है, अनलेस वो जो गृहस्थ है एकदम कड़क, ऐसा कड़क ब्रह्मचारी गृहस्थ है, बहुत पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित किया हुआ कड़क नियमों का पालन करने वाला, ऐसे अलग बात। अगर कोई भक्त सिंसियर भी हो गृहस्थ, फिर भी संग करना है, क्योंकि सब भक्त ही हैं, सबका सम्मान करना है। परंतु ब्रह्मचारी को चाहिए कि ज्यादा समय ब्रह्मचारियों के साथ में बिताए, ठीक है ना। ये है कि बताए गए थे कि कोई भी सेवा हमको की जाती है हमको दक्षता से करना चाहिए, लेकिन दक्षता से करने से भी प्रतिष्ठा आ जाती है। तो दक्षता से करने से प्रतिष्ठा आएगी, इसलिए हम सेवा दक्षता से नहीं करेंगे, सेवा अधूरा छोड़ेंगे, ये ठीक नहीं। हमारे से जितना, हमारी जितनी योग्यता है, जितनी हमारी शक्ति है, उतना हमको दक्षता से सेवा करने को प्रयास करना चाहिए। तो इसका समाधान ये नहीं है, सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम दक्षता से नहीं करेंगे। सॉल्यूशन है कि दक्षता से करके प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करेंगे, दूसरों के सामने बताएंगे देखो मैं कितना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, मैं कितना अच्छा सफाई करता हूं। मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बातचीत नहीं करना है। लेकिन करना है बहुत सिंसियरली, उसमें पूरी तरह से मग्न हो जाना है। जैसे अभी वो बता रहे थे तो वो कहानी वो शिष्य की, जो लकड़ी उठाते उठाते शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शमित पाणी, तो अपने समित जो लकड़ी होता है अग्निहोत्र के लिए, पाणी मत अपने हाथों में लेकर जो आता है वो शिष्य। तो ऐसे करते करते वो बूढ़ा हो गए, उसको समझा भी नहीं कैसे। तो उसी प्रकार से हमें भी ऐसे पूरा मग्न हो जाना चाहिए उस सेवा में, उसमें जितना अच्छा हो सके हम उसको करना चाहिए सेवा, हृदय लगाकर जितना करना है। में टिकना यह भी बहुत बड़ी बात है, कोई वास्तव में आश्रम में टिक रहा है तो। आश्रम में टिकने का मतलब नहीं है कि शारीरिक रूप से केवल है, उतना ही नहीं। आश्रम में टिकने का मतलब है कि आश्रम की भावना से टिकना है, जैसे अभी वर्णन किया, उस दृष्टि से टिकना मतलब टिकना। दूसरी बात कि अगर कोई भक्त वास्तव में सिंसियर है और बाद में कोई समस्या की वजह से वो छोड़ के चले जाता है तो ठीक है, जिस वजह से भी वो गया हो, लेकिन जो उसने भक्ति की वो कभी उसका नाश नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी भक्ति परिपक्व न होने की वजह से, या उसके कोई और दोष होने की वजह से, या उसके सिंसियर पहले होने के बाद भी उसके अंदर कोई अनर्थ उत्पन्न हो गया और वो सावधान नहीं रहा उनके बारे में, उसकी वजह से भी वो छोड़ के चले जा सकता है। अगर शुरुआत में कोई भक्त बहुत सिंसियर है लेकिन वो सतर्क नहीं रहा, वो सावधान नहीं रहा, जो अनर्थ आते हैं, जो आपने एक रविवार के प्रवचन में सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हम सबको माली बनना है, भक्ति लता बीज को कैसे उगाना है, अनर्थ जब आते हैं उनको पहचानना है। अगर हम सिंसियर हैं लेकिन हम सावधान नहीं हैं, बुद्धिमान नहीं है, सिंसियर होते होते हम सिंचाई कर रहे हैं भक्ति लता बीज का, परंतु अनर्थ आते आते हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचान भी रहे हैं तो उनको काट नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे भक्ति को नष्ट करेंगे। सिंसियर भी हैं तो, अगर सिंसियर जल डालने के लिए हैं तो उपशाखाओं को काटने के लिए भी सिंसियर होना चाहिए, सिंसियर दोनों चीजें के लिए होना चाहिए। अगर जो किसान है वो केवल बीजारोपण करने के लिए सिंसियर हुआ, अच्छा हुआ, परिश्रमी हुआ, लेकिन जो जंगली घास है उसको काटने के लिए नहीं हुआ, तो अंततः उसका जो फसल है वो ठीक नहीं आएगा। तो भक्त को चाहिए कि अनर्थों से भी बचना है, तब वो अच्छी तरह से टिक सकेगा। टिकना मतलब सत्वगुण, रजोगुण मतलब एकदम धुआंधार करके फिर थोड़े समय के बाद चले जाना, जैसे शूटिंग स्टार होता है ना, वो उल्का उल्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़े समय के लिए आता है, बहुत चमकता है, सब लोग वाह 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 करते हैं, चमत्कार चमत्कार वाह 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 वाह, फिर फुस चले जाता है। रजोगुणी एकदम आके धूमधाम सब एक दिन में सबको कृष्ण भक्त बनाना, सारी दुनिया को परिवर्तन करना, ये करना वो करना, लेकिन बेसिक पॉइंट जब मूल बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, वैष्णवों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे नम्र रहना चाहिए, कैसे साधना के ऊपर लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कैसे रोज श्रवण कीर्तन होना चाहिए, ऐसे चीजों के पीछे लापरवाही, लेकिन है बहुत सिंसियर, उत्साह से प्रीच करना चाहता है, प्रचार करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, कृष्ण के लिए करना चाहता है, लेकिन लापरवाही, मूल बातों के ऊपर ध्यान नहीं, ये करना वो करना, जल्दी बहुत कुछ करना है उसको, फिर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। टिकने के लिए सत्वगुण चाहिए, और तमोगुण बाद में भी टिक नहीं पाएगा, वो जो आलसी है, ज्यादा सोएगा, सेवा नहीं करेगा, जो बोलने में ठीक नहीं है, वो भी ठीक से नहीं रह पाएगा। अहंकार जहां है, रविवार के प्रवचन में गोविंद प्रभु बोल रहे थे ना, तमोगुण में रहते हुए भक्ति करना, रजोगुण में भक्ति करना और सत्वगुण में भक्ति करना। तमोगुण भक्ति के लक्षण क्या बताए थे? क्रोध ज्यादा, अहंकार ज्यादा, द्वेष ज्यादा, और रजोगुण के लक्षण प्रतिष्ठा, मान सम्मान। तो ये सब चीजें क्योंकि सत्वगुणी नहीं है इसलिए हमारी भक्ति को टिका कर नहीं रख सकती हैं। भले कोई व्यक्ति ज्यादा चमत्कार नहीं करे, हमको केवल दूसरों को दिखाने के लिए चमत्कार नहीं करने, देखो हमने कितने कम समय में इतना सब चमत्कार करके दिखाया, नहीं, ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर चमत्कार हो जाते हैं, हो भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन सच्चे चमत्कार वो हैं जो समय के बाद पता चलते हैं, एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल बाद पता चलेगा क्या चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ, फिर कितने लोग टिके कितने नहीं टिके, ये चमत्कार है। टिकना भक्ति मार्ग में लंबे समय तक, ये चमत्कार की बात है। सिंसियर और सीरियस का अंतर, कोई अंतर नहीं है, लेकिन साथ साथ और एक भी चीज है, बुद्धिमान भी हो।